जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी जनावल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवर धारी नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमोन्नति वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय माधव कुंज विहारी जय प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नरप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 18 श्लोक संख्या 21। हस्तक्रः अपरः मा भूत् गृहीताय त्वया मे एषा ईशकृतः वीरा सम्बन्धः नौ न पौरुषः हस्तक्राहो परो मा भूत् हस्तक्राहो परो मा भूत् गृहीताय त्वया हि मे गृहीताय त्वया हि मे एष ईशकृतो वीरा सम्बन्धो नौ न पौरुषः हस्तग्राहो परो मा भूत् गृहीताय त्वया हि मे एष ईश कृतो वीर कृतो वीरा सम्बन्धो नो न पुरुषा हस्तग्राह मेरा हाथ सामने वाले अपरः
अपरः
दूसरा
दूसरा
माम
माम
मत
मत
भूत
भूत
होये गृहीताया
गृहीताया
स्वीकृत
स्वीकृत
त्वया
त्वया
तुम्हारे द्वारा
तुम्हारे द्वारा
ही
निस्संदेह
निस्संदेह
मैं
मेरा
मेरा
एषः
यह
ईशकृतः
ईशकृतः
दैव द्वारा नियोजित
दैव द्वारा नियोजित
वीरा
वीरा
हे वीर
हे
वीर संबंध संबंध नौ हमारा
ना
नहीं
नहीं
पौरुषः
पौरुषः
मानव निर्मित
मानव निर्मित
अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद देवयानी देवयानी प्रेम सिक्त शब्दों में राजा ययाति से बोल हे परम वीर हे राजा हे शत्रुओं के नगरों के विजेता आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए क्योंकि हमारे हाथ हमारे यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। तात्पर्य देवयानी को कुएं से निकालते हुए राजा याति के उसके सौंदर्य की अवश्य प्रशंसा की होगी। अतएव उसने यह भी पूछा होगा कि तुम किस जाति की हो। तब देवयानी ने तुरंत उत्तर दिया होगा हमारे पहले ही विवाह हो चुका है क्योंकि तुमने मेरे हाथ थामा है। पति तथा पत्नी के हाथों को मिलाना सभी समाजों की प्रथा है। अतएव क्योंकि ययाति ने उसका हाथ थामा होगा यूं ही जिन्हें अपने को विवाहित मान लिया क्योंकि देवयानी वीर ययाति पर मुग्ध थी अतएव उसने प्रार्थना की कि वह ना तो अपना मन बदले ना किसी अन्य से उसका विवाह होने दे। ओम ज्ञातवानंद ज्ञानांजन शलाके शिक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सर्वदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधान्तनमोऽस्तुते रक्तकांचन गौरंगिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये अध्याय का नाम है या शीर्षक है राजा ययाति पुनः युवावस्था को प्राप्त करना। ये अध्याय के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहुष, राजा नहुष ययाति के पिताजी थे और उनको शाप मिला अगस्त इत्यादि ऋषियों के द्वारा, और नहुष शाप की वजह से उनका पतन हुआ। तो उसके बाद ययाति राजा बने और ययाति और चार अन्य पुत्र थे, अन्य भाई थे। तो उन्होंने क्या किया, ययाति ने चार भाइयों को अलग अलग दिशाओं के ऊपर राज्य करने दिया और ययाति ने देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री है और शर्मिष्ठा जो विषपर्वा की पुत्री है उन दोनों से विवाह किया। और जैसे सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहे, ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया तो तुरंत परीक्षित महाराज ने संबोधित किया, वैसे कैसे कि ये राजा ययाति क्षत्रिय है और एक क्षत्र बंधु लगता है। एक क्षत्रिय राजा होने के नाते उनको ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं करना चाहिए था, ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करना क्षत्रियों के लिए वर्जित है। अनिलोम और प्रतिलोम दो प्रकार का विवाह की शैली होता है। वैसे साधारणतः जिस परिवार में जन्म लिए हैं उसी जात में विवाह होना ये स्वभाव है, ये परंपरा है। लेकिन जब कोई अन्य जात में विवाह होता है कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर कोई ब्राह्मण के घर में कोई जन्म लिया है वो पुरुष क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हुआ पुरुष कभी भी ब्राह्मण की कन्या को वो स्पर्श नहीं कर सकता या विवाह नहीं कर सकता। इसके वजह से जो उनके संतान होते हैं अयुग्य संतान होते हैं। जैसे कि भागवत का ही शुरुआत इसी प्रकार हुआ है, भागवतम के या अन्य पुराणों के वक्ता थे सुत गोस्वामी, लोमहर्षण सुत जो सुत गोस्वामी के पिताजी थे। लोमहर्षण सुत ये प्रतिलोम से प्रकट हुए थे, इसलिए उनके अंदर वो कैरेक्टर नहीं था, वो जन्मतः उनके पास ऐसे संस्कार नहीं थे जिसके द्वारा वो ब्राह्मणों को आदर दे सके, भगवान को आदर दे सके। बलराम जी को ये मालूम था, इससे जब बलराम जी आए तो बलराम जी के उस सभा में नैमिषारण्य में सभी ऋषिजन सब लोग खड़े हो गए बलराम जी के स्वागत करने में, लेकिन लोमहर्षण सुत ये खड़े नहीं हुए थे। तूने सोचा थे मैं तो भागवत की वक्ता हूं मैं क्यों खड़ा होऊंगा। तो बलराम जी ने क्रोध में उन्होंने क्या किया, एक घास का तिनका लिया और लोमहर्षण सुत को वध कर दिया। क्या उनके अंदर ये दोष क्या था, उनका जन्म ही दोष था। तो इसलिए विवाह संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। अगर उस विवाह संस्कार में ही गलत है या उसके अंदर ही दोष है, वो विवाह संस्कार की वजह से जो प्रजा उत्पन्न होती है, पुत्र या पुत्रियां उत्पन्न होती है, उनके अंदर भी दोष रहता है। इसलिए पहले जमाने में या वैदिक संस्कृति या सभ्यता के अनुसार जब किसी पुत्र या अपनी पुत्री का विवाह करना होता है, जो बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, अन्य समाज के वरिष्ठ होते हैं, बड़े सोच विचार करके विवाह करते हैं, क्या मेरी पुत्री हैं, क्या उनको एक योग्य पति है कि नहीं जिसके साथ विवाह हो रहा है। अगर कोई किसी का पुत्र है वो उनका विवाह कराने से पहले क्या जो कन्या से विवाह हो रहा है क्या वो योग्य है कि नहीं, उसके ऊपर बहुत विचार किया जाता। ये जिम्मेदारी था माता पिता के ऊपर और बड़े लोगों के ऊपर, ताकि आगे आने वाला जो पीढ़ी हो तो उनकी जो उनका जो बुद्धि है, उनका जो संस्कार है, वो अच्छा कैसे रहे, ये विचार था। स्वाभाविक है कोई भी क्षत्रिय है वो विचार करेगा कि मैं हमारे लिए एक क्षत्रिय जैसा पुत्र हो। वो जिस प्रकार के पुत्र का प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे हमको ऐसा पुत्र प्राप्त होना चाहिए, हमारे एक पुत्र को या इस प्रकार के गुण होना चाहिए, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो स्वाभाविक तरीके से क्षत्रिय जो है क्षत्रिय जैसे पुत्र को आशा करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जैसा पुत्र को विचार करेंगे। तो ये वैदिक सभ्यता है, तो ये प्रतिलोम वर्जित है। तब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री से विवाह किया। तो इसलिए ये श्लोक में शुरुआत में परीक्षित महाराज ने ययाति को क्षत्र बंधु कहा। क्षत्र बंधु या ब्रह्म बंधु वो होता है भले ही वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है लेकिन क्षत्रिय नहीं है, इसलिए खाली बंधु कहा गया है। यानी क्षत्रिय के बंधु हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, यानी ब्राह्मण के बंधु हो, ब्राह्मण नहीं हो। जैसे अश्वत्थामा को भी ब्रह्म बंधु कहा गया है क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था ब्राह्मण परिवार में लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था, इसलिए वो ब्रह्म बंधु कहा गया। बंधु मतलब तुम्हारा बंधुत्व है एक क्षत्रिय के साथ, लेकिन खुद के पास निजी कोई योग्यता नहीं क्षत्रिय या ब्राह्मण की। तो जैसे परीक्षित महाराज इस प्रकार संबोधित किया, सुखदेव गोस्वामी ये पूरा बता रहे हे परीक्षित महाराज, कभी ये मत सुनना कि ययाति राजा जो है वो क्षत्र बंधु है, नहीं। ये जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने पर भी या क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण की कन्या से, देवयानी जो बृहस्पति, बृहस्पति ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की कन्या से उनका जो विवाह है, विवाह कोई अन्य कारण से नहीं हुआ, ये प्रतिलोम नहीं माना जाता है। ये प्रतिलोम नहीं माना जाता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक दैव का हाथ है, उसके पीछे उनका ऊपरी हाथ है, उनका संयोग से हुआ है, इसके देवताओं का हाथ है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के इस प्रकार का विवाह हुआ है, इसलिए ययाति को क्षत्र बंधु कहना उचित नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त है, परम विरक्त वैष्णव है, जो जन्मतः मुक्त है, वो ययाति की स्टोरी बता रहे हैं। ययाति का विवाह किस प्रकार शर्मिष्ठा से हुआ और साथ साथ में देवयानी से भी हुआ, तो देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ ययाति का कैसे हुआ उसका पूरा स्टोरी बता रहे हैं। वैसे सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त है और उनको ययाति ने किस प्रकार इन दोनों से विवाह किया ये इससे कोई मतलब ही नहीं है उनको, ऐसे एक तरीके से देखा जाए। लेकिन फिर भी ये नौवां स्कंद है, नौवां स्कंद के बाद कौन सा स्कंद आने वाला है? दसवां स्कंद आने वाला है। तो दसवां स्कंद वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है दसवां स्कंद में जिनके पास वैराग्य है। वैराग्य के बिना कोई भी व्यक्ति दसवां स्कंद में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि तो भगवान श्री कृष्ण लीलाओं से भरा हुआ स्कंद है। जो भागवत का सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है दसवां स्कंद, आश्रय तत्व है। जो भी व्यक्ति दसवां स्कंद को आस्वादन करना चाहता है तो उनको विरक्त होना ही चाहिए। तो विरक्ति को उत्पन्न कराने वाली जो लीलाएं हैं उनको सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो विरक्ति को उत्पन्न करना है किसी के हृदय में तो उनको ये स्टोरी बताना होगा, अनेकों ऐसी प्रसंग बताना होगा इतिहास में जिसमें बड़े बड़े राजा हुए, अनेकों राज्य को संभाले, युद्ध किए, विजयी हुए और अनेकों पत्नियों को उन्होंने स्वीकार किया राजाओं ने, और बहुत भोग किया, भोग करने की सीमा तक पहुंच गए लेकिन फिर भी अंततः सब लोग विरक्त हुए। तो ये जो घटनाएं हैं इतिहास में, ये घटनाओं को स्मरण करने के द्वारा या सुनने के द्वारा व्यक्ति के हृदय में विरक्ति आती है। जैसे हम लोग कभी प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम इस बात को कहते हैं देखिए अल्फ्रेड फोर्ड अम्बरीश दास वो भी हमारे हरे कृष्ण का भक्त है, वो भी जप करते हैं, तब व्यक्ति सोचने लग जाता है, जब इतना अमीर व्यक्ति अल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, जब वो भक्ति कर रहा है तो इसके अंदर निश्चित रूप में कुछ ना कुछ है कि नहीं? तो यही टेक्निक है। तो सुखदेव गोस्वामी भी ययाति का चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। यह कभी कभी हम भी कोई एक महान अमीर व्यक्ति या व्यापारी या कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम भी लेते हैं। कभी कभी मान लीजिए कोई फिल्मी कलाकार है, हरे कृष्ण मंत्र को जप करता है, हम बड़े विज्ञापन करते हैं कि ये कितना उन्होंने ये फिल्मों में काम किया है, उन्होंने ये किया है, अभी वो जप कर रहे हैं। वैसे हमको उनका फिल्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका विरक्ति से मतलब है। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी इधर वर्णन कर रहे हैं या राजा ययाति के चरित्र के विषय में। अगर देखा जाए जब से सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए इसके पिछले श्लोक तक, यानी अभी के जो पिछले श्लोक तक देखा जाए, दो स्त्रियों के बारे बीच में जो ईर्ष्या की स्वभाव है उसका वर्णन है। अभी उसको सुखदेव गोस्वामी से क्या लेना देना। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये स्त्री का स्वभाव है, वो एक दूसरे को देख के साथ में कभी रह ही नहीं सकते। वैसे वर्णन किया गया दोनों सहेलियां थी, दोनों प्रभुपाद लिखते हैं बोथ वर गर्लफ्रेंड, एक दूसरे के बहुत करीब मित्र थे। लेकिन ये स्त्रियों के बीच में जो मित्रता होता है वो कब टूटता है कब जुड़ता है वो ब्रह्मा जी क्या कृष्ण भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे हुआ शर्मिष्ठा और देवयानी, वो स्टोरी आपको मालूम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। वो दोनों रहे थे जंगल में विहरण करने के लिए और दोनों नहा रहे थे और वस्त्रों को छोड़ के वो एक तालाब में नहा रहे थे। उस समय शिवजी नंदी की ओर बैठ के जा रहे थे तो तुरंत उनके साथ अन्य सहेलियां सब लोग बाहर आए, आके अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, देवयानी ने क्या किया, शर्मिष्ठा का वस्त्रों को पहन लिया और जैसे इस प्रकार का शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया और जैसे इस प्रकार पहन लिया तो देवयानी तुरंत क्रोधित होकर डांटने लगी शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा को बोलने लगी तुम्हें क्षत्रिय हो, तुम जानते नहीं हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम मेरे वस्त्र पहन लिया। वैसे खूब डांटने लगी बिना सोचे समझे। तो तब देवयानी को शर्मिष्ठा को गुस्सा आया, क्रोध आया, तो फिर वापस उन्हें देवयानी को डांट दिया, तुम लोग कौवे जैसे हो, हम कुछ फेंकते हैं तो तुम ब्राह्मण लोग आके खाते हो। इस प्रकार दोनों के बीच में खड़ा हो गया। तो वैसा हुआ तो शर्मिष्ठा ने क्या किया, इस क्रोध में देवयानी को पूरा उनके कपड़ा निकाल दिया और एक कुएं में फेंक दिया। क्रोध में क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुछ भी कर सकता है, क्षत्रिय का कौन है। तभी देवयानी कुएं में गिर पड़ी है। अभी उस समय क्या, शर्मिष्ठा और सब अन्य लोगों को लेकर, अन्य उनके मित्रों को लेकर, वो सहेलियों को लेकर चली गई। अभी उस समय ययाति राजा आ गए, अभी हमारे हीरो आए वो घोड़े पे सवार होके आ रहे थे, शिकार करने गए थे जंगल में और खुद शिकार बन गए। तो ययाति राजा आए, आके वो घोड़े चला के आ रहे थे तो उनको बहुत प्यास लगा, तो ने सोचा चलो मैं कुएं से पानी निकाल के पीता हूँ। तो कुएं से पानी निकालने पीने गए और तुरंत उधर उनको दिखाई पड़ा, उधर देवयानी है, वस्त्र विहीन थी। तो ये प्रसंग अभी तक चला और जैसे देवयानी को उन्होंने देखा राजा ने तुरंत क्या किया, अपना ही वस्त्र उन्होंने देवयानी को प्रदान किया और तुरंत वस्त्र प्रदान करके ययाति ने क्या किया, देवयानी को हाथ पकड़ के ऊपर उठाए और जैसे हाथ पकड़ के ऊपर उठाए तो प्रभुपाद जी कहते तात्पर्य में निश्चित रूप में ययाति राजा देवयानी की सुंदरता को देख के प्रशंसा किया होगा और उनकी सुंदरता को देख के ययाति मुग्ध हो गया। मुग्ध होके उन्होंने प्रशंसा किया और पूछा, क्या पूछा उन्होंने, आप कौन से जात के हो, कौन से वर्ण के हो, क्योंकि ययाति को मालूम पड़ गया देवयानी के वो क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने के नाते या ब्राह्मण है करके मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर इच्छा थी मैं जानू। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं, अगर आप क्षत्रिय कुल के हो, जरा सा भी अगर मुझे पता लग जाता आप क्षत्रिय, तुरंत मैं स्वीकार करूंगा। यानी भले ही वो देवयानी को देख के मुक्त हो गया था, राजा ययाति जो है वो मालूम था, धर्म के नियम मालूम था। बड़े ही राजा के अनेकों अनेकों चरित्र इधर वर्णन किया जा रहा है, वो धार्मिक थे, धर्म के निष्ठावान थे। तो ययाति ने सोचा अगर ब्राह्मण है तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी भाव से राजा ययाति ने पूछा देवयानी से, आप कौन से वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कौन है? तो देवयानी तुरंत समझ गई, क्योंकि स्त्रियां होती हैं बहुत बुद्धिमान होती है, पुरुषों के मन में क्या हो रहा है वो समझने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता, वो जल्दी समझ जाते हैं। बिना बोले ही वो पुरुषों के मन को पढ़ने में वो बहुत होशियार होते हैं। तो देवयानी तुरंत कहा, तम वीरम आहा, तुमने कहा आहा मतलब आप बोलने लगी, क्या बोलने लगी? हे वीर ययाति, हे ययाति, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं, मैं शुक्राचार्य की पुत्री होने के नाते मैं एक ब्राह्मण हूं, और प्रेम निर्भरया, मैं उनसे ययाति से बहुत प्रेम के द्वारा इस प्रकार बोलने लगी। क्या बोलने लगी? राजन त्वया गृहीत मे पाणिहि, राजन हे राजा, त्वया मे गृहीत पाणिहि, आपने मेरा हाथ को ग्रहण कर लिया। एक बार ग्रहण कर लिया तो ये प्रश्न पूछना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। राजन त्वया गृहीतो मे पाणिहि, परा पुराञ्जया, तो मैं किसी और के हाथ को, मैं अपने हाथ को किसी और को नहीं दूंगी। और यह आपका कर्तव्य बनता है राजा कि मेरी हाथ को आपने एक बार स्वीकार कर लिया तो किसी और को ये हाथ को स्पर्श करने का मौका मत दीजिए। आगे उन्होंने कहा, हस्तग्राहो परो मे भूत, ने कहा कोई और इस हाथ को ग्रहण ना करे। क्यों? क्योंकि गृहीत्या त्वया ही में एष ईश कृतो वीरा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है देवयानी, क्योंकि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की परिवार में जन्म लेने की वजह से वो भी कहते हैं याति को, एष ईश कृतो वीरा, ये कोई मेरी चाहने से या आपकी चाहने से विवाह नहीं हुआ है, ये निश्चित रूप में दैव का संयोग है। देवता लोग चाहते हैं, इसलिए कहती हैं एष ईश कृतो, ये विवाह जो है कृतो हो गया है। तो इसलिए आप ये प्रश्न मत पूछिएगा कि मैं कौन सी वर्ण की हूं, मैं अभी आपकी पत्नी हो चुकी हूं क्योंकि आपने मेरा हाथ ग्रहण कर लिया है। इसलिए विवाह संस्कार को पाणिग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। पाणिग्रहण का अर्थ क्या है? हाथ को ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कितने भी सभ्यताएं हैं पूरा विश्व में, हर सभ्यता में विवाह संस्कार अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन उन सारे संस्कारों में एक चीज जो है वो कॉमन है, वो क्या है? वो हाथ पकड़ा देते हैं। एक पुरुष जो है उस स्त्री का हाथ को ग्रहण करना, पानी को ग्रहण करना, ये विवाह संस्कार का ये कॉमन अंग है। जैसे अन्य बहुत सारे कुल है, बहुत सारे जात है इस देश में भी और विदेश में भी, कोई भी आप ट्राइबल जात में भी जाओ, उसमें हाथ को ग्रहण करना ये जो है ये निश्चित रूप में रहेगा। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं तात्पर्य में। तो देवयानी कहते हैं, एष ईश कृतो वीरा संबंधो नौ नु पुरुषः, ये कोई पुरुष के द्वारा ये विवाह नहीं किया गया है, ये देव संयोग से किया गया है, इसलिए तो आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। इतना नहीं, आगे इस बात को कहती हैं कि इस कुएं में गिर पड़ना और ये सब चीजें इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे शाप मिला था। मैं एक मेरे गुरु के गुरुकुल में पढ़ने वाला एक कवा कच्चा नामक एक व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरा प्रेम हुआ तो उन्होंने मुझे मैं उनसे प्रस्ताव रखी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन कच्चा ने क्या किया, ने कहा कि आप मेरे गुरु की पुत्री हो इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और जैसे इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैंने उनको शाप दे दिया, मैंने किया कि जो भी तुमने सीखा है मेरे पिताजी से वो सब कुछ तुम भूल जाओगे। तब वो भी ब्राह्मण है, उन्होंने भी शाप दिया मुझे कि तुम्हारी जो इस प्रकार का वर्ताव ब्राह्मण जैसा वर्ताव नहीं है इसलिए तुमको ब्राह्मण पति के रूप में नहीं मिलेगा, तुमको एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण से निम्न कुल वाला होगा वही व्यक्ति तुमको पति के रूप में मिलेगा। इस प्रकार ब्राह्मण का वाक है, ब्राह्मण जो है वो देवता माने जाते हैं, भू देवता माने जाते हैं। तो ब्राह्मण की बात को सत्य करने के लिए ही देवता लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया, इस प्रकार का हमारा मिलन हुआ। तो इसमें ना आपका दोष है ना मेरा दोष है, ये सब कुछ दैव संयोग से है। तो इस प्रकार देवयानी ययाति को कहती हैं। तो ययाति आगे स्वीकार करते देवयानी को, और देवयानी को जैसे वो स्वीकार करते हैं बाद में भी अनेकों स्टोरी आगे बढ़ता है कि फिर समिष्ठा जो है वो आती हैं, वो भी ययाति के साथ विवाह हो जाता है और देवयानी की दासी के रूप में उनका रहना पड़ता है। लेकिन सार रूप में ये जो श्लोक है इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द है येष ईश कृतो वीरा। बहुत सारे हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारी चाहत के अनुसार नहीं होती है, वो जो घटनाएं जो है वो क्या होती हैं, वो दैव संयोग से होता है। अनेक अनेकों चीजें हैं, भागवत के शुरुआत में भी परीक्षित महाराज क्रोध में उन्होंने क्या किया था, एक सर्प को डाल दिया था, किसके ऊपर, एक ऋषि के सर के ऊपर डाल दिया था। तब परीक्षित महाराज को शाप मिला, जब शाप मिला परीक्षित महाराज सोचने लगे कि मैं क्षत्रिय हूं, भूख और प्यास को नहीं सहन कर सका, प्यास को सहन नहीं कर सका और इससे मैंने ऐसा कार्य किया मैं सोच भी नहीं सकता, निश्चित रूप में भगवान का हाथ है उसके पीछे। खैर परीक्षित महाराज को इस प्रकार विचार करने के पीछे और देवयानी इधर जो कह रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। परीक्षित महाराज की इस प्रकार का विचार करना भगवान की योजना से सब हुआ, ये शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति को प्रस्ताव करने वाला है। लेकिन इधर भी देवयानी का इस प्रकार विचार करके ययाति को इस प्रकार कहना, भले इसको शुद्ध भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन वैदिक संस्कृति को इधर प्रस्थापन किया जा रहा है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ये बात विचार करना कि इस प्रकार सोचना जो भी होता है दैवीय संयोग से होता है, ये मेरी प्रयास से कुछ नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मान लीजिए किसी के साथ किसी का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद सोचते हैं कि मैंने गलत व्यक्ति के साथ विवाह किया, इसके साथ नहीं होना चाहिए था, किसी और के साथ होना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का विचार करके वो सोचते हैं कि मैं डाइवोर्स ले लूंगा या डाइवोर्स ले लूंगी और किसी और के साथ विवाह करूंगी या करूंगा। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जो विवाह होता है किसी न किसी के साथ वो कर्मों के हिसाब से होता है। एक व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से किसी को पत्नी मिलती है, किसी को किसी प्रकार का पति प्राप्त होता है और किसी दैव के अनुसार किसी को पत्नी प्राप्त नहीं होती है जैसे ब्रह्मचारी होते हैं वो भी दैव के हिसाब से है। और इसका विचार करना चाहिए दैव के हिसाब से, यानी दैव यानी उनके पीछे देवताओं का हाथ है। कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारी कर्मों को का हिसाब किताब जो है वो देवता लोग देखभाल करते हैं, वो देवता लोग देखभाल करते हैं, इसलिए वो देवताओं के हाथ में है किसको किस प्रकार का पति मिले, किसको किस प्रकार का पत्नी प्राप्त होता है। अगर जब हमारी दिमाग लगाएंगे तब क्या होगा, केवल दुखी दुख अनुभव होगा। इसलिए जैसे कर्मों में है वैसा मुझे पति प्राप्त हुआ है, जैसे मेरे कर्मों में है उस प्रकार का पत्नी प्राप्त हुई है, चलो ये जीवन निकाल देता हूं। और अंततः चाहे कोई भी पति हो पत्नी हो, मृत्यु के साथ या उसके पहले, छोड़ना ही है भगवान के लिए, ये विचार के साथ जीना चाहिए। ग्रस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक उपदेश जब मिलता है, लोग सोचते हैं या साधारणता इस बात को विचार करते हैं, कुछ भक्त लोग घास कर घृस्त वो सोचते हैं कि मेरी भौतिक परिस्थिति थोड़ा सा बदली हो जाए तो मेरी भक्ति में प्रगति हो जाएगा। और प्रयास किसके लिए करते हैं, भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं इस घर में हूं, ये घर अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी एक बेडरूम फ्लैट वाला घर है, एक बेडरूम फ्लैट, वन बेडरूम किचन वाला फ्लैट है, अगर टू बेडरूम किचन वाला मिलेगा तो उधर मेरा भक्ति अच्छा हो जाएगा। इससे क्या करते हैं, तो टू बेडरूम फ्लैट वाला घर लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं अभी मेरा नौकरी ठीक नहीं है, अगर मैं नौकरी बदली कर दूंगा तो मेरा अच्छा भक्ति हो जाएगा। लेकिन जो भी नौकरी किसी को प्राप्त होता है, जो भी व्यापार किसी को प्राप्त होता है, जो परिवार जिसको प्राप्त होता है, वो क्या कैसे है, एषा ईशक्तितो, ये कर्मणा दैव नेत्रेणा, दैव संयोग से ही प्राप्त होता है। हमारा प्रयास जो है भौतिक स्थिति को परिवर्तन करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो भले ही इधर ये प्रसंग में एक भौतिक प्रसंग है, दोनों के बीच में प्रेम आकर्षण का, लेकिन फिर भी देवयानी ने सोचा ये सब चीजें कैसे हो रहा है, मुझे कोई कारण था ही नहीं, खाली कपड़ा किसी का पहन लिया, उसने किसी का कपड़ा पहन लिया, वो दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया, इतना उत्पात मच गया कि एकदम नग्न होकर उनको कुएं में डालना पड़ा। देवयानी सोचने लगी ये सब क्या है, ये स्वाभाविक चीज नहीं है, अंततः इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, देवता लोग मेरे कर्मों को मुझे देना चाहते हैं, इसलिए जो कर्म के हिसाब से हो रहा है होने दो, हमको अंततः इस भवबंधन से मुक्त होना है, भौतिक भोग से मुक्त होना है और भक्ति को प्राप्त करना है। ये ययाति के प्रसंग में अंत में सुनते हैं, ययाति ने बहुत प्रयास किया, उनका उनको भी शाप मिला, यही देवयानी ययाति से इतना प्रेम कर रही है, ये कह रही है कि दैव संयोग से हुआ है। लेकिन जैसे उनके परिवार में और एक स्त्री आई शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा को जैसे पुत्र प्रकट हुए, जैसे देवयानी को मालूम पड़ा कि शर्मिष्ठा को पुत्र हुए, इसका अर्थ क्या है, इसने ययाति ने शर्मिष्ठा में से भी संग किया है, तो तुरंत क्रोधित होकर पिताजी को कहने लगी, पिताजी तो पुत्र के वश में रहते हैं या पुत्री के वश में रहते हैं, क्योंकि पिता और पुत्री के बीच में बहुत गहरा संबंध रहता है, ये स्वभाव है, माँ जो पुत्रों से प्रेम करती है पिता जो है पुत्रियों से प्रेम करता है, और पुत्रियों को बात सुन के पिताजी रह नहीं पाते। और जैसे देवयानी शुक्राचार्य को कहा, शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, आगे आता है क्या शाप दिया, ययाति वृद्ध हो जाएगा। अभी देवयानी बहुत दुखी हो गया, अरे मेरे पति को आपने वृद्ध बना दिया। तब ययाति आके प्रार्थना की, शुक्राचार्य बोला ठीक है मैंने शाप तो दे दिया है, लेकिन आप ये बात जानो कि कोई और आपका वृद्धावस्था को लेना चाहता है तो ले सकता है। तो ययाति पुत्रों से निवेदन कर लिए, मेरा वृद्धावस्था को लो तो वह युवावस्था दो, क्योंकि मेरे अंदर और भोगने की इच्छा है। अब देखो क्या स्थिति है ययाति की, इसी का अंदर ही भोग करने की प्रवृत्ति ऐसा है, वो वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भी नहीं जाता है। ऐसा कहा गया है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनवीनम दाजातम सुंदम तदपि न मुच्छति आशापंडम। कृपा शंकराचार्य इस बात को कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है शंकराचार्य का, कृपा शंकराचार्य का भज गोविंदम में, भज गोविंद इस बात को कहा गया है, क्या बराबर श्लोक पढ़ो, अंगम गलितम फलितम उंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। हाँ वृद्धो याति, वृद्धावस्था आ गया है और दंडा को पकड़, तदपि नमक्षति आशा पुण्यम। तो ययाति ने कहा कि पुत्र मुझे दे दो तुम्हारी युवावस्था को, आखिरी पुत्र ने दे दिया, ठीक है पिता का आज्ञा को पालन करना मेरा कर्तव्य है, दे दो। तब ययाति ने फिर वापस भोग करना शुरू किया, करते करते एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर कोई पूरा इस भौतिक जगत में भोग के दुखी होके फ्रस्ट्रेट होता है, ये समझना चाहिए बहुत अच्छा है। एक बार मैं वैसे यूथ प्रोग्राम ले रहा था, एक लड़के ने आया प्रश्न पूछा, तो जी मेरे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड। दुख की बात यह है कि लोग इस जगत में सुखी है, यही दुख की बात है, यही दुख की बात है। सुख की बात यह है जब लोग पहचान जाएंगे मैं दुखी हूं, तो ये याति जो है अभी उनका जीवन से यही शिक्षा सुखदेव गोस्वामी प्रदान करना चाहते हैं कि ये जो भोग हैं, ये कितना भी कोई कुछ कर ले, अनेकों अनेकों साल तक कर ले, फिर भी अंततः उनको छोड़ना ही है। तो क्यों ना अभी छोड़ दे, वाई नॉट गिव इट अप नाउ इटसेल्फ। कुछ लोग कहते हैं तो जी ये संसार को अनुभव करने के बाद छोड़ना चाहिए, तो वो जो है वो मूर्ख है, क्योंकि उनको मालूम है छोड़ना ही है, क्यों नहीं छोड़ोगे अभी, वाई नॉट नाउ। नहीं नहीं, थोड़ा अनुभव करने की बात। एक बार एक लड़के को मैंने पूछा, हम योगा रिट्रीट में गए थे, कुछ यूथ प्रोग्राम लेके गए थे, बहुत साल पहले की बात है, तब पहला क्लास मेरा ही था। मैंने बोला मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मैंने पूछा आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तो एक एक व्यक्ति एक एक कहता गया। तो एक लड़के ने कहा बस अभी मुझे इंजीनियरिंग पास करना है। मैंने इसके बाद क्या करोगे, बस मैंने पूरा जीवन का प्लान बना दिया, मैं इंजीनियरिंग पास करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा नौकरी करूंगा, उसके बाद क्या करोगे, तो मैं बिजनेस करूंगा, उसके बाद क्या करोगे, तब मैं घर बनाऊंगा, उसके बाद क्या करोगे, अभी घर बनाने पैसा हो गया तो शादी करूंगा, उसके बाद क्या रहे, तो बच्चे होंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया गया बस 40 साल में मुझे कुछ नहीं करना है, 40 साल होते हैं बस सब सेटिंग करना है, और मुझे हम लोग ये थे एक अच्छा सा नदी के किनारे नर्मदा के तट पे, क्योंकि नर्मदा के तट पे इतना सुंदर वातावरण है, इधर मुझे एक फार्म हाउस देना है, उधर फार्म हाउस बना के मुझे उधर रहना है, 45-50 तक बस शांति से अपने जीवन यापन करना है। तो मैंने कहा अगर वही चीज मैं अभी दे दूं तो उसको डर लगा, नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए, वो टाइम में ये पूरा हंगामा करने के बाद चाहिए, ये मूर्खता है कि नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है अंततः उसको मालूम है छोड़ना ही है, शांति ही प्राप्त करना है, हंगामा क्यों करते हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस हंगामा, अभी करो, डू इट नाउ इटसेल्फ। इसलिए शास्त्र में कहा बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये सारे प्रसंगों को सुन के, सुखदेव गोस्वामी इसी बात को कहते बुद्धिमान व्यक्ति बनो, बी इंटेलिजेंट, ये पहचानो, क्या पहचानो कि यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं एवते, देखिए यही संस्पर्श जाप होगा, दुख नहीं एवते, अत्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। ये याति कहते अपने जीवन के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी ययाति का जीवन वर्णन करते गए, क्या कहते हैं, ये नहीं उपदेश दे रहे कि आप भी ययाति जैसा पूरा करते करते अंत में छोड़ो, नहीं, ययाति को देखो वो भी फ्रस्ट्रेट हुआ, वो भी छोड़ा, तो आप कौन होते हो ययाति के सामने, इतने बड़े राजा ययाति, वो जितना भोग सकता है वो हम भोग ही नहीं सकते, जब वो भी दुखी हुआ तो हमारा भोग क्या है, इससे बुद्धिमान बनो, बी इंटेलिजेंट। भगवीता भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं एवते, अद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते, इसलिए भौतिक भोग जो है उसमें रमण नहीं करता कौन, बुधा, उसको बुद्धिमान कहा गया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये सारे प्रसंगों को वर्णन इसलिए कर रहे हैं आप बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनने से वैराग्य जो है उसको प्राप्त करने का इच्छा प्रकट होती है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ नहुष जो है उनको शाप मिला था, राजा नहुष बहुत शक्तिशाली हो गए थे, इंद्र का पदवी को स्वीकार कर लिया था, तब इंद्र ने याचना किया सप्तऋषियों से, बहुत अहंकार हो गया था राजा नहुष में, तब इंद्र ने इंद्र को इंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी को भी वो देखभाल नहीं कर रहा है, वो या पत्नी को भी वो बलात्कार कर रहा है। तब सप्तऋषियों ने के पास गया, तब वो लोगों ने कहा या इंद्र को आइडिया दिया कि आप अपनी पत्नी को कहो कि नहुष को कहने के लिए मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन आप अपना इंद्रत्व दिखाओ। तो इंद्रत्व कैसे दिखाएंगे, नहुष ने पूछा। इंद्र की पत्नी का नाम क्या है, सची। तो सची ने कहा कि जब तुम सप्तऋषियों के द्वारा पालकी ढोते हुए नहीं आओगे, तब तक मैं आपको इंद्र के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। नहुष ने कहा ऐसा है कि सप्तऋषियों बोले आओ, तुम मेरे पालकी को उठाओ, मैं इनके पास जाना चाहता हूँ, सची के पास जाना चाहता हूँ। सप्तऋषि कौन है, इतने महान। सप्तऋषि ने कहा ठीक है, आप राजा हो, इंद्र हो ना, बड़े शक्तिशाली हो, ठीक है हम लेके जाएंगे। तो लेके जा रहे थे, लेकिन सप्तऋषियों को तो आदत नहीं है। एक सप्तऋषि जो है वो नाटे से है, अगस्त्य ना, इज शॉर्ट, तो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। तब नहुष ने अपने पैर से लात मार के कहा जल्दी चलो, सर्पा, संस्कृत भाषा में सर्प का अर्थ जल्दी जाओ। तब सप्तऋषियों को जब उन्होंने कहा अच्छा हमको सर्प कह दो, तुरंत ने वो लोग शाप दिया तुम सर्प बन जाओ। तो ऊपर इंद्र से पूरा नीचे आके पूरा वो पैथॉन बन गया, सर्प बन गया। पैथॉन को क्या बोलेंगे, बड़ा अजगर बन गया, अजगर के रूप में पड़ा हुआ सप्तऋषि। तो ये शाप था। तब ये याति का, तो ये याति उनके दूसरा पुत्र था, क्योंकि नहुष का जो पहला पुत्र है वो उनको कोई विरक्त संन्यास दे दिए थे, तब ये याति राजा बना। तो ये स्टोरी इस प्रकार की। ये नौवें स्कंद में बहुत सारे ऐसे ऐसे अजीब अजीब घटनाएं हैं, अद्भुत घटनाएं हैं। ये केवल इसलिए हैं ताकि दसवां स्कंद से में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति के अंदर पूर्ण विरक्ति आ जाए। जब भी अगर मान लो कि किसी को अंदर किसी के मन में वो की प्रवृत्ति आता है तो स्मरण करना चाहिए, यार इतना करके थक गया और छोड़ दिया तो मैं कौन उसके सामने, इसके लिए सब प्रसंग है। ठीक है, हाँ देवयानी, हाँ यही जन्म था ऐसा कुछ। एक पति को, हाँ हाँ वही वही यही जन्म, यही जन्म था। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, यानी कहने का अर्थ ये है कि विधि के अनुसार ऐसा किसी न किसी को हुआ रहता है, लेकिन आप ब्रह्मचारी कर रहे हो, पालन कर रहे हो, आप जो जो दैव के अनुसार होना है वो नहीं हो रहा है। किसी का दैव के अनुसार विवाह होता है, ठीक है, और दैव के अनुसार किसी का पत्नी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, या वो किसी कारणवश छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो तभी भी क्यों नहीं सोचता है कि दैव के अनुसार है, क्यों नहीं रोता है वो, क्यों 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 रोए बिना क्यों नहीं रहता है, रोता है क्यों, वो टाइम में क्यों नहीं सोचता है। जैसे वो इस प्रकार का प्रश्न पूछा, तो जी सबको दैव के अनुसार हो रहा है, तो आपके जो नौकरी मिला है, जो पैसा मिला है, उसे संतुष्ट क्यों नहीं हो आप, है कि नहीं। तो हम लोग जो इस प्रकार की ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण है कि स्वाभाविक तरीके से वही व्यक्ति के मन में इच्छा आती है कि मैं बिना विवाह के रहूं, स्वभाव के अंदर आती है, या क्योंकि उनके अंदर वो वैराग्य योग है उनकी जन्म कुंडली में, तो वैराग्य योग है इसलिए वो सोच रहा है कि नहीं तो इतने लोग हैं, कितने लोग हैं संसार में, उनको बोलना नहीं पड़ता है विवाह करो, है कि नहीं। लेकिन इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों में शायद एक आध व्यक्ति सोचता है, क्यों सोचता है, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य योग है, उनके संस्कार में इस अनुभूति हो चुका है, ये सब फालतू चीज है, पिछले जन्म में ही अनुभूति हो चुका है इसलिए वो। दूसरा कारण है संगति। संगति का अर्थ क्या है, आप एक वैरागी के संगति में आए, उस संगति का प्रभाव से व्यक्ति वैराग्य ग्रहण कर सकता है। अगर संगति के प्रभाव उनके जन्म कुंडली के अनुसार विवाह करने का योग है, वैराग्य योग नहीं है, लेकिन संगति का प्रभाव ज्यादा है तो भी वैराग्य रह सकता है। एक ब्रह्मचारी आए, प्रभु जी मैं एक जोशी के पास गया, उनने कहा कि तुम ब्रह्मचारी है, वैराग्य योग है नहीं, तुम्हारे कुंडली में विवाह का संस्कार लिखा है। तो तब से मेरा मन बदली हो गया, मैंने बोला था सबसे पहले गलती तुमने ये किया कि तुम एक एस्ट्रोलॉजी के पास गया, इससे बहुत डेंजरस है, ब्रह्मचारी को कभी एस्ट्रोलॉजी के पास जाना नहीं चाहिए। गया तो भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी और वैष्णव का संगति जो है वो इससे शक्तिशाली है, तो मैं जितना उस संगति का फायदा लूंगा उतना मैं हमारे कर्मों से परे जा सकता हूं, समझ रहे। ये दो कारण है, कुछ लोगों का स्वाभाविक वैराग्य रहता है इसलिए वो रह जाते हैं। अगर मान लो कि किसी कारणवश वो वैराग्य होने पर भी विवाह होना पड़ा, फिर भी वो रहेगा ही नहीं, वो दोनों साथ में रह नहीं सकते। और दूसरा कारण क्या है, संगति। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व भावनावान संघ में जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं और सन्यासी बनते हैं, तो हो सकता है किसी के अंदर वैराग्य हो सकता है किसी के अंदर वैराग्य ना हो, लेकिन संगति उतना शक्तिशाली है कि वो रह सकता है। और अन्य संप्रदाय में, खास करके मध्य संप्रदाय में, संन्यास देने से पहले उस बच्चे का जन्म कुंडली को देखा जाता है, तीन एस्ट्रोलॉजर को दिया जाता है, जब तक तीनों के तीन नहीं कहेंगे कि ये जो है ये बच्चे के अंदर वैराग्य योग है, तब तक उसको संन्यास नहीं देते। वैराग्य होना, योग होना जरूरी है, लेकिन हमारे संस्था में वो जो एस्ट्रोलॉजी है उससे ज्यादा महत्व किसको देते हैं, संगति को देते हैं, एसोसिएशन। अगर आप वैराग्यों का संगति को बहुत सीरियसली ग्रहण करोगे और उनके साथ बहुत घनिष्ठता से रहोगे, भले ही आपके अंदर कर्मों के अनुसार 10 पद भी हैं, फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज द स्पेशलिटी। ठीक है, क्योंकि उनको लालच था। जो लालची ब्राह्मण होता है वो किसी का भी गुरु बन जाता है। लालची ब्राह्मण क्या है, वो किसी के जो पैसा देता है उसका गुरु। तो इसलिए ब्राह्मणों का जो लालच है बहुत खराब है, वेरी 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 बैड, वन शुड नॉट हैव ग्रीड, ब्राह्मण शुड नेवर हैव ग्रीड। लेकिन आज कैसा पिता हो गया, ब्राह्मण तो लोभी होता ही है ना, हाँ, इसे दक्षिणा देना चाहिए, ऐसा लोग खुलेआम बोलते हैं, ये गलत बात है। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, अगर लोभी हुआ तो निश्चित रूप में उनके जो ब्राह्मणत्व है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री गौपाद की जय।